તારીખ 13/11/1990 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 550 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 250
લખેલા પત્રમાં જે ગંભીર આશય લખ્યા છે તે વિચારમાં જઈને આત્માના પરમ હિતશ્રી થાય તેવા આશય છે. 400 પત્રમાં મોક્ષજીને વિચારવાનું જે મોક્ષજી પરમ હિત થાય એ કેટલીક વાતો લખે છે. એ ઉદ્દેશ અમે તમને ઘણી વાર સરળ કર્યો છે. એ વાત પણ સહેજે સહેજે તમને ગાવ પણ ઘણી વાર કહેવાય છે. છતાં તે ઉદ્દેશ આજીવિકાના કષ્ટ ક્લેશથી તમને ઘણી વાર વિસર્જન થયો છે અથવા થઈ ગયો છે. તમારે સંયોગ પાછો પરિણામ ન લગાડવા જોઈએ. ભલે સંયોગોમાં પ્રતિકૂળતા હોય તો સંયોગ પાછળ પરિણામ લાગશે તો આત્મા પાછળ પરિણામ નહીં લાગે. એક આત્માથી દૂર જવાનું બધા જ સંસારી જીવોને કારણ બને છે. મોક્ષુ પણ એમ જ કરે તો બીજામાં આમાં ફરક શું પડશે? જગતના તમામ જીવોના પરિણામ સંયોગ પાછળ નીકળાયેલા લાગે છે, વિચારે લાગે છે, જે ત્યાંથી છૂટી શકતો નથી. હવે જેને મુક્ત થવું છે, મોક્ષુ એટલે જેને મુક્ત થવું છે એને તો પરિણામનો વિષય બદલવો જોઈએ. કોઈ એમ કે અનુકૂળતા હોય તો પરિણામ ન લાગે, પણ પ્રતિકૂળતામાં તો લાગે ને, એવું કાંઈ નથી. અનુકૂળતા વાળાને વિશેષ લાગી જાય છે, વધારે રસ પડી જાય છે. અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા બેમાંથી તો એ તો હોવાના જ. આ અનુકૂળતા હશે ના, પ્રતિકૂળતા હશે, બેમાંથી તો એક પ્રકાર હોય. પણ હોય જેના પરિણામ પ્રતિકૂળતામાં લાગે છે એના અનુકૂળતામાં લાગ્યા વગર રહેશે. અનુકૂળતામાં લાગેલા છે એના પ્રતિકૂળતામાં છૂટી શકશે એને નિયમબદ્ધ થાય. મુખ્ય વાત એ છે કે આજીવિકાના કષ્ટ ક્લેશથી તમને ઘણી વાર એ વાત ભૂલાઈ ગઈ છે અથવા ભૂલાઈ જાય છે. તમારાથી અમારા પ્રત્યે માવિત્ર જેટલો તમારો ભક્તિભાવ છે એટલે લખવામાં અડચણ નથી. માના જેમ ભાઈ હોય, અત્યંત પ્રેમ હોય એની વાત છે. અત્યારે પરિસ્થિતિ છે, અત્યંત પ્રેમ હોય, અભિન્ન ભાવના જેને કે ભેદભાવ ન હોય, બે ભાઈ વચ્ચે ભેદભાવ ન હોય, તારું મારું ન હોય, એ પ્રકાર જેની વાત છે. અને પાછો ભક્તિભાવ છે એટલે લખવામાં અડચણ નથી. એટલે તમને કહી શકાય, ઘરનાને બે વાર કડક કહી શકાય, પારકાને ન કહેવાય, પણ ઘરનાને તો સાચી વાત જરાક કરતા કહી શકાય એવો અધિકાર હોય છે. એમ ગણીને તથા દુઃખ સહન કરવાની અસમર્થતાને લીધે સમય દુઃખ સહન નથી કરી શકવાના એવી તમારી તમારી માન્યતા નહીં. અમારી પાસેથી તેવા વ્યવહારની યાચના બે પ્રકારે તમારાથી થઈ છે. એ સમય સુધારવા માટે તમે બે પ્રકારે માગણી કરી છે. અમારી પાસે બહુ સ્પષ્ટ લખે છે કે એક તો કંઈક સિદ્ધિ એથી દુઃખ મટાડી શકાય તેવા અર્થની એવી યાચના છે. આપની પાસે કંઈક બુદ્ધિ સિદ્ધિ છે, કંઈક ચમત્કાર છે, અમારું દુઃખ ટાળો. અમે દરિદ્ર છીએ, અમારું દુઃખ ટાળો. એક તો એ પ્રકારે. બીજી યાચના કઈ વેપાર રોજગાર આની, અમને કોઈ એવો વેપાર રોજગાર બતાવી દો તો પછી આ જીવિકાની ઉપાધિ રહે નહીં. બેમાંની જે યાચના તમારી અમારી પાસે થાય તે તમારા આત્માને હિતનું કારણ રોજનાર છે. આ બેમાંથી એકેય યાચના થાય, કોઈ પણ પ્રકારે યાચના થાય, તે સંયોગ પાછળના તીવ્ર રસવાળા પરિણામ છે. અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતાને ઘણું મૂલ્ય આપી દીધા પછી એ પરિણામ ઉત્પન્ન થયેલા છે. એ તમારા આત્મહિતનું જે કારણ છે, એટલે તમારી જે યોગ્યતા છે, આત્મહિતનું કારણ શું એની પાસે છે? તો ભાગભાઈ પાસે યોગ્યતા છે. એ યોગ્યતાને રોકનાર રોકનાર છે, યોગ્યતાને અટકાવે છે. તમારે જે તમારા આત્મહિતમાં આગળ વધવું જોઈએ એને આ પરિણામ રોકી દે છે. તાત્પર્ય એમ કહે છે કે ભલે કોઈ જે યોગ્ય વાત યોગ્યતાવાન હોય, ઓછા અથવા વધારે પ્રમાણમાં, થોડા અથવા ઘણા પ્રમાણમાં યોગ્યતાવાન હોય, તો પણ એની યોગ્યતાને રોકાવાના કારણો બને છે એમાં સંયોગ પાછળના પરિણામ એ મુખ્ય ભાવ થઈ જાય છે. એ યોગ્યતાને રોકશે, એમાંથી વિકાસ નહીં થાય, આત્મિક વિકાસ નહીં થાય, આત્મશાંતિને આ યોગ્યતાને પહોંચે, આત્મશાંતિને એ રૂંધે છે. અને એટલું એને આપત્તિ છે, એટલી વિપત્તિ છે, એટલું દુઃખ છે.
યોગ્યતા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે એવા પરિણામ, એવા જાતના ભાવ રહેતા હોય, આશ્રય બુદ્ધિ થઈ ગઈ ને, આર્થિક અનુકૂળતા વગેરે, યોગ્યતા હતી તો યોગ્યતા ક્યાંથી પૂરી પછી પરિણામ તો પેદા.
યોગ્યતા તો એમને શ્રીમદજી પ્રત્યે ભક્તિભાવ થયો અને પોતાના આત્માને મુક્ત થવાની જે ભાવના થઈ એમાંથી યોગ્યતા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. મૂલ્યાંકન થયું, ઓળખાણ થયું અને આત્મહિતની ભાવના થઈ, એનાથી યોગ્યતા ઉત્પન્ન થઈ. હવે યોગ્યતા આગળ વધીને સંગીત દર્શન આદિ ધર્મને પામે એવી સરસ યોગ્યતા હોવા છતાં આ સંયોગ વૃત્તિના પરિણામ એ યોગ્યતાને આગળ વધવા જતા નથી, રોકી પાડે છે. એમ કેમ છે એ વાત તો એમ નથી. કોઈ પણ પાત્ર જીવને પાત્રતા ઓછી હોય, અતિ વિશેષ પાત્રતાવાન જીવ છે તો પણ એને એ પ્રતિબંધનું કારણ છે, રોગનું કારણ છે, અવરોધનું કારણ છે. પણ કોઈ પણ પોતાના મોક્ષને કોઈ પણ ઓછી વૃત્તિ પાત્રતાવાળા જીવને સિદ્ધાંતો જ લાગુ પડે છે. એટલે પોતે પોતાને વિશે વિચારવાનું છે કે જો કંઈ આ જીવની યોગ્યતા હોય તો સંયોગ પ્રત્યેના જે મારા પરિણામ છે મારી યોગ્યતાને હાનિ કરવાના છે. એમાં આ કાળમાં સર્વથા અનુકૂળતા હોય એવું તો એ જ જીવ પણ ગોતી શકાય એવું નથી. હવે જો ઊંડા સ્વરૂપે છે કે કેટલીક જાતના પુણ્ય ઉદયના યુગે કેટલીક જાતના પાપના યુગ ચાલુ ને ચાલુ મળે છે, એ એક સાથે ઉદય પામે છે. અનુકૂળતા દૂર થઈ જાય છે, પ્રતિકૂળતાની ઉપાધિ એને એવો ગૂંચવે છે, એવો મૂંઝવે છે, એવો અટકાવે છે, એની યોગ્યતા છે, એ ખલાસ થઈ જાય છે. પણ એ યોગ્યતા એવી સરસ હતી કે એ જે જન્મ પામી શકે, સમય દર્શનમાં આવી શકે એવી ઘણી સારી યોગ્યતા હોવા છતાં એમને જે વર્તમાન પોતાના સંયોગ ઉપરનું જે પરિણામની તીવ્રતા થઈ આવતી હતી અને પ્રતિકૂળતા હટાવવા માટે શ્રીમદજીને ખુદને યાચના કરતા હતા. હા, બીજો કોઈ ધંધો વેપાર કરે એનો એટલા અમને વાંધો નહોતો. એમ નહોતા કે તમારે આજીવિકા ની તકલીફ છે છતાં ધંધો ન કરતા, વેપાર ન કરતા, કોઈ તમે વ્યવસાય ન કરતા કે નોકરી નો એવું નથી, એમાં એટલું નુકસાન નથી. પણ ધાર્મિક યોગની અંદર જે અનુકૂળતા પ્રાપ્ત કરવાનું કારણ તો એ એમનું દર્શનનું અને તીવ્ર થવાનું કારણ પણ જઈને એ દર્શનનું અને તીવ્ર થવાનું કારણ છે.
એક વાત ફરી થાય છે કે યોગ્યતાનું માપ પણ જાણી જ કાઢી શકે, અજ્ઞાની તો માપ કાઢી
શકે,
અજ્ઞાની માપ ન કાઢી શકે. કોઈ પણ મુમુક્ષી ની યોગ્યતાનું માપ ન કાઢી શકે.
કદાચ ઓછા ઓછા પ્રમાણમાં જેટલી નિર્મળતા હોય એટલો ખ્યાલ આવે, જેમ કે કોઈ પોતા કરતા વિશેષ યોગ્ય હોય તો ખ્યાલમાં આવી જાય. કોઈ પોતા કરતા જ્ઞાની ને આવે એટલો ન આવે, જેટલો જ્ઞાની ને આવે એટલો ન આવે. કેમ કે એ તો એ વિષયની જેટલી નિર્મળતા છે જ્ઞાનમાં એટલું માપ આવે છે. એ મુમુક્ષુના જ્ઞાનની નિર્મળતા ઉપર આધારિત છે. જેટલી પોતાની તે ભૂમિકાની નિર્મળતા હોય એટલો ખ્યાલ આ વિષયમાં વધારે પડે છે. આ વિષય જે આત્મા સંબંધીનો પાત્રતા ઉપરનો જેટલો વિષય છે અધ્યાત્મનો, એ બધામાં કેટલું કેટલું કામ કરે જ્ઞાન, કે જેટલી પોતાની નિર્મળતા હોય એટલું. બસ દેશે દેખાય છે એટલે મુમુક્ષુને જેટલી નિર્મળતા હોય એટલું એને ખ્યાલ આવે. જ્ઞાની જેટલો તો ન આવે તો સ્વાભાવિક છે
મને તો એટલું જ લાગતું હતું કે
પોતે પણ એ લાઈન માં જનારો છે અને પોતે કેટલો યોગ્યતા સંપન્ન છે એટલે એને એ લાઈન માં થોડો ઓછા ઉતાવળ છે, એ લાઈન માં ચાલનારો છે, એના પરિણામ ચાલી રહ્યા છે એટલે એને ખ્યાલ આવે.
બીજું એક આમાંથી આ ફલિત થાય છે કે આ તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની આ અને આના દોષને જણાવી દીધો અને બતાવી દીધો, ઠપકો આપ્યો. મને કહે તીર્થંકર પાસે કોઈ માંગણી કરતો હોય તો તીર્થંકર કે પ્રતિમા ક્યાંથી કરવા આવે, તો પરોક્ષ જ્ઞાની પાસે કોઈ માંગણી કરે તો એ ક્યાંથી કરવા આવે. એટલે અહીંયા જે લાભ છે એ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે.
પ્રત્યક્ષમાં તો લાભ છે, એનો તો કોઈ બીજો વિકલ્પ નથી, બીજો કોઈ પર્યાય નથી. પ્રત્યક્ષતાનો તો કોઈ બીજો વૈકલ્પિક પર્યાય નથી. આમ ન હોય તો આમ વાંધો ન આવે, એ તો કોઈ પ્રશ્ન નથી. એટલા માટે તો પ્રત્યક્ષ યોગ ઉપર એમનો ઘણું વજન છે. શ્રીમદજીનું પોતાનું પ્રત્યક્ષ યોગ ઉપર ઘણું વજન છે. નિવેદન કરે એટલી પણ સરળતા હોય કે બીજું બીજાને કહે તો પણ એનો ઉપકાર માને. સારું છે, તમે મારા દોષ મેં નતો જાણ્યો, આ તમે મને જણાવો એ બહુ સારું છે. એ રીતે સત્સંગની અંદર તો એવો થોડો લાભ છે, વિશેષ કરીને એટલા માટે તો અરસપરસનો સત્સંગ છે, એનો ઉપદેશ આદેશ છે.
વર્તમાન નથી અને છે તો એનો કોઈ સમય પ્રકાર
એટલે તો સત્સંગ નથી એનો અર્થ એમ કે આજે મુમુક્ષુઓ હોવા છતાં સત્સંગ નથી, અથવા મુમુક્ષુઓ હોવા છતાં મુમુક્ષુતા નથી, એમ કહું
છું.
મુમુક્ષ હોવા છતાં મુમુક્ષુતા નથી. મુમુક્ષુતા તો જેને છૂટવું છે એને મુમુક્ષુ કે પોતાના દોષથી જેને છૂટવું છે, નિર્દોષતા જેને પ્રાપ્ત કરવી છે એનું નામ મુમુક્ષુ. તો એનો વ્યવહાર તો પોતાના ધ્યેયને અનુકૂળ હોય ને, એની વર્તના એની પ્રવર્તના જે કહો તે એના ધ્યેયને અનુકૂળ હોય ને, એ વૃદ્ધ હોય. સ્વાધ્યાયમાં તો એવી વાત સમજીને કેમ પોતે અંગીકાર કરી શકે એટલો પ્રયત્ન કરવાનો, વાત સમજવા મળે છે અંગીકાર કરવાનો પ્રયત્ન પોતાને કરવાનો, સમજવાનો પ્રયત્ન પોતાને કરવાનો છે, ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન
મુમુક્ષુને સુધારી શકે તો એ તો એવી પરિસ્થિતિમાં આવું વ્યવહાર બને કે ઓલામાં પોતાના દોષ કરવાની એટલી સરળતા હોય ત્યારે એવું વ્યવહાર બને. એ વગર તો એમને કહું કે સુધારવાનું સુધારવાનું કઈ વ્યવહાર બળતો જ નથી.
કોઈ કોઈને સુધારવાનો અભિપ્રાય રાખે તો એ તો બિલકુલ અભિપ્રાય છે. બીજાને સુધારવાનો અભિપ્રાય એ મુમુક્ષુતામાં નથી. મુમુક્ષુતાનો અંગ તો પોતાને સુધારવાનો છે એ અભિપ્રાય છે. પછી એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે કે જ્યારે હું પોતે જ એમ કહું કે મારો આ દોષ છે, કેવી રીતે આ છૂટે એવું કાંઈ તમે મને બે વાત કહો તો સારું. તો સામેથી એ બે પ્રકારનો વ્યવહાર થવાનો છે. વ્યવહાર તો અરસપરસ જેવો વ્યવહાર પોતે કરે એવો સામે કરે છે, અવાજ નીકળે એવો જ પડઘો કરે, એ તો સીધી વાત છે. દરેક જગ્યાએ એમ જ બને છે પરસ્પર. તો
બધા મોક્ષમાં દોષ તો છે જ, કોઈમાં કોઈ દોષની મુખ્યતા હોય, કોઈમાં કોઈ દોષની મુખ્યતા હોય, તો જ્યારે પોતે નિવેદન કરવા માટે તૈયાર થાય તો આ
ડિસ્કશન થઈ જાય. પોતાના નિવેદન કરીને પોતે બીજાનું કરે તો એમાં તો કઈ વ્યવહાર બરાબર નથી થતો.
ખરેખર તો ભાઈ સત્સંગ એટલો મહત્વને ત્યાર સુધી આજે એક સાલ ડેઢ સાલથી ચાલે છે, લેકિન ખરેખર શંકર એનો કોઈ ફળ આવતો હોય પરિણામ એવો નથી આવતો.
વિદ્યામાં ચિંતિ મનુષ્ય જીવ કો અપની યોગ્યતા રુકને કા યહી કારણ હૈ કે વો સૂર્ય કે પ્રતિ જીતના તીવ્ર રસ્ય પ્રયાણ લગાતા હૈ ઉતના ઉનકી યોગ્યતા મેં નુકસાન હોતા
હૈ.
यहाँ पर ये बात सही है कि आपने अपना सहयोग सुधार करने के लिए अगर कोई व्यापार धंधा ढूंढ लिया कर लिया तो इतनी बाधा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है. किंतु कोई ज्ञानी के पास धर्म के क्षेत्र में धर्म के निमित्त के किसी माध्यम से धर्म के किसी भी निमित्त के माध्यम से संयोग सांसारिक संयोग में वृद्धि करना सुधार करना तो इस संयोगिक लाभ लेना ये जीव को बहुत बड़ा नुकसान है. ये नुकसान जीव को धर्म से दूर ले जाने के लिए ये अपने आत्मा से दूर हो जाएगा, अपने स्वभाव से दूर हो जाएगा, अपने धर्म से दूर
हो जाएगा,
बहुत दूर हो जाएगा. ऐसी एक बात चलती है. क्या कहा कि आपकी दोनों याचनाओं में से एक भी हमारे पास छूट जाए या आपके आत्मा के हित के कारण को रोकने वाला और अनुक्रम से मलिन वासना का हेतु हो, क्योंकि जिस भूमिका में जो उचित नहीं है उसे वो जीव करे तो उस भूमिका का उसके द्वारा समझ में त्याग हो जाए, इसलिए कुछ संदेह
नहीं है.
क्या कहते हैं कि मुमुक्ष अपनी योग्यता के बाहर अपनी भूमिका के बाहर कोई परिणाम करे तो उसकी मुमुक्ष की भूमिका का नाश हो जाएगा. क्या हो जाएगा मतलब नाश हो जाएगा. सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि की भूमिका के बाहर के परिणाम करेगा व्यवहार करे तो उसका सम्यक दृष्टिपना छूट जाएगा. पंचम गुण स्थान वाला अपनी भूमिका के बाहर के परिणाम करेंगे तो उसका ही गुण स्थान छूट जाएगा. और मेरा जो है वो अपनी भूमिका के बाहर के परिणाम करेंगे तो उनके गुणपना छूट जाएगा, त्याग हो जाएगा, नाश हो जाएगा. ये जनरल सिद्धांत बताया कि जिस जीव जिस भूमिका में क्योंकि जिस भूमिका में जो उचित नहीं है उनके लायक नहीं है उसे वो जीव करे तो उस भूमिका का उसके द्वारा स्वयं के द्वारा ही सहज त्याग होता है, सहज नाश हो जाता है. इसलिए जहां व्यवहार अनुचित है ऐसा प्रसिद्ध है वहां निश्चय का विषय में निश्चय धर्म है कि नहीं है, निश्चय योग्यता है कि नहीं है, इसका कोई परीक्षण करने की आवश्यकता
नहीं है.
जैसे मुनिराज उद्देश्य कहा लेते हैं तो मुनि बुद्ध में है कि नहीं है तो विचार करने की आवश्यकता
नहीं है.
जैसे मुमुक्षु है ऊपर से लेकर नीचे तक के देव गुरु शास्त्र की विराधना होती है इसे सीधी या अर्धपुत्री या सत्पुरुष का विरोध होता है या ऐसी कोई परिस्थिति होती है जो धार्मिक निमित्त के माध्यम से कुछ अपना संयोगिक लाभ लेने का प्रयास करता है, परिणाम करता है, अभिप्राय रखता है तो उसको वहां मुमुक्षुता का त्याग हो जाता है, वहां उसको मुमुक्षुता रहती नहीं है. ऐसा कहता है उस भूमिका छूट जाती है.
जीव तो संसार में है, संसार की भाषा तो रहेगी, संसार की भाषा तो रहेगी कहीं भी जाओ तो वांछा तो रहेगी उसको,
वांछा रहेगी, लेकिन उसको ये विवेक होना चाहिए कि मुझे जो संयोग की वांछा है वो उस स्थल में होनी चाहिए। उसका विवेक तो होना चाहिए। जैसे हमें पैसा कमाना है वो जरूरत है, आवश्यकता है, लेकिन विवेक तो होना चाहिए कि हमें प्रमाणिकता रखनी है। ऐसा तो दो तरह से आता है, प्रमाणिकता से भी आता है, अप्रमाणिकता से भी आता है। जैसे किसी भी पदार्थ की वांछा हो लेकिन विवेक तो होना चाहिए, वो समुचित समुचित रूप से उचित रूप से उसका व्यवहार करे, अनुचित रूप से उसका व्यवहार नहीं करे। तो संसार के पदार्थ हमें चाहिए तो हम व्यापार करें, धंधा करें, कोई कारोबार करें, नौकरी करें, किसी भी प्रकार का उद्योग करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है उतनी। लेकिन हम भगवान के सामने खड़ा रहें, विकराल के सामने, और हम पूजा करें, दर्शन करें, उसमें ये वांछा करें कि हमको इससे पुण्य होगा और पुण्य का फल से हमारी प्रतिकूलता दूर हो जाएगी, या हमको गुरु के पास जाए, या हमको ऐसी धार्मिक शुभ प्रवृत्ति करेंगे जिससे हम ऐसा अभिप्राय रखें कि हमारे अनुकूलताएं बढ़े, हमारी प्रतिकूलता का नाश हो। तो ये उचित स्थान में ये याचना नहीं है, अनुचित स्थान में ये याचना है।
किसी किसी विधि विधान से फल की वांछा
करें, विधि विधान कुछ भी हो, या हम मदद मांगे, आप मुमुक्ष मुमुक्ष हुए हमसे थोड़ी मदद कीजिए, हम मुश्किल में इतनी मदद हमको आपसे मिल जाए तो अच्छी है, ये उचित नहीं। अब दूसरे सगाए संबंधी से कुछ भी मदद मांगो उसमें उतना दोष नहीं है जितना धार्मिक क्षेत्र में किसी निमित्त से भी सांसारिक लाभ लेने की जो प्रवृत्ति है, परिणाम है, इससे नुकसान होता है, ये बात चलती है।
मुख्य बात आएगी तो बहुत मुश्किल से बात
है, इसमें क्या मुश्किल है?
तो जैसे हम है जैसे मुख्य है, संसारी है,
दोनों संसारी है, लेकिन संबंध संसार का है या संबंध मोक्ष मार्ग का है, किस प्रकार का संबंध है? अगर मोक्ष मार्ग का संबंध है वहां संसारिक प्रवृत्ति अगर चल गई तो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति आपस में कैसे चलेगी, कैसे चल सकती?
नहीं,
इसका नाश हो जाएगा।
बराबर,
ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
ऐसे परिणाम दर्शन मोह की वृद्धि के कारण
होते हैं। दर्शन मोह होता है तभी ऐसे परिणाम होते हैं, वो तो आत्मा से दूर जाने की ही बात है, धर्म से दूर अधिक दूर जाने की बात है। इस विषय में बराबर छानबीन करके समझ लेना चाहिए कि हमारा कौन सा व्यवहार उचित है, धार्मिक क्षेत्र में हमारा व्यवहार कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है, ये समझ लेना चाहिए अच्छी तरह।
ठीक
ये बीजे बात थी कि हम दूसरे दूसरे मुमुक्षों के प्रति वात्सल्य भाव रखें और इनका काम करें वो दूसरी बात होगी, लेकिन हम अपेक्षा रखें। प्रश्न निकला है तो थोड़ी और बात करिए कि जब हम किसी को मदद करते हैं, हमारे मुमुक्ष भाई को या बहन को, तो हमें ये भी अभिप्राय रखना नहीं चाहिए कि अगर अगर हमारी परिस्थिति कमजोर हो जाए तो हमारे भी कोई जैसे मदद करे, इसलिए हम करें। आज तो हमारी स्थिति अच्छी है, हम दूसरों मोक्षों की साधनियों की हम ध्यान रखते हैं, रोग भी करते हैं, लेकिन ये अभिप्राय से नहीं करना चाहिए कभी कि हमारे कोई ऐसी कमजोर परिस्थिति हो गई तो हमको भी कोई ऐसा मदद करे, ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वहां तक ये बात होनी चाहिए, फिर करे तो कोई आपत्ति नहीं। व्यापार अभी तो परिस्थिति अच्छी है, लेकिन भविष्य में कभी भी हो जाए संयोग की कभी धारणा थोड़ी ऐसा ही रहेगा, तो उस वक्त वो बात नहीं आनी चाहिए। पहले से ही साफ अभिप्राय होना चाहिए कि हमने भूतकाल में बहुत से लोगों को बहुत मदद की थी, तो हमारे सामने कोई नहीं देखते, देखो कैसा समाज है, कि हमने तो कईयों का ध्यान रखा, कितने को मदद किया, किन किन लोगों को कैसा कैसा दिया, आज तो हमारे सामने कोई नहीं देखते हैं क्या हमारी हालत होगी। ऐसी बात कभी भी मन में आवे, विचार में आवे, अभिप्राय में आवे, ये बात पहले से पक्की हो जानी
चाहिए,
वरना ये आए बिना रहेगा। क्यों नहीं आए बिना रहेगा? कि दूसरों की मदद हम इसलिए करते हैं कि हम इसकी प्रतिकूलता को देख नहीं सकते, तो दया आती है हमारे परिणाम में, दया आती है कि इनको प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए, उसको प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। तो प्रतिकूलता दुख रूप है, प्रतिकूलता दुख का कारण है, ये सिद्धांत हमें सीखना नहीं है, ये सिद्धांत हमें मजबूत नहीं करना है, इस सिद्धांत को हमें टालना है, छोड़ना है, क्योंकि हमारी प्रतिकूलता हमारा दुख का कारण हो जाएगी, तो इस रूप को हमारे पर करुणा करे, ये बात अपेक्षित हो जाए का दुख का कारण
नहीं है,
इसलिए ज्ञान दान पहले देते इसका यही कारण है, तो उसको ज्ञान में आना आ जाने से उसकी प्रतिकूलता प्रत्येक का दुख का परिणाम ही मिल जाएगा, प्रतिकूलता प्रतिकूलता के रूप में भोगने में ही नहीं आई है, इसलिए ज्ञान दान दिया जाता है। ठीक है, समझते हैं कि इनकी योग्यता ऐसी है कि उसके पास ज्ञान नहीं है, तो अपने सहज करुणा से अपनी करुणा की दवाई करना है, अपनी दया के परिणाम की दवाई है, ये इनकी दवाई नहीं है, इनकी मुश्किली की दवाई नहीं है। मुझे जो दया का परिणाम होता है ये भी एक दुख भाव है, दुख होता है, इनका दुख अपने को दुख लगता है, तो अपना दुख मिटाने के लिए हम दया दान करते हैं, इनका दुख मिटाने के लिए ये बात हो जानी
चाहिए।
ऐसा है कि जिसके पास पूर्वपुण्य योग से कुछ भी संपत्ति है उसको अपने संपत्ति का अच्छा से अच्छा उपयोग हुए ऐसा भावना होना चाहिए, ये संपत्ति तो मेरी चीज नहीं है, आखिर में वो मेरी चीज
नहीं है,
लेकिन वो पुण्य योग से संयोग है, और लोग कहते हैं कि आपका अधिकार है इस पर, वास्तव में मेरा अधिकार तो
नहीं है,
फिर भी लोग कहते हैं कि मेरा अधिकार है, तो ये अच्छे से अच्छा इसका कोई उपयोग हो, क्या इसका उपयोग हो अच्छे से अच्छा हो, तो अच्छे से अच्छा उपयोग कहां होगा कि जहां धर्म हो, धर्म वृद्धि हो, धर्म के निमित्त की वृद्धि हो, धर्म के कारणों की वृद्धि हो, धर्म के कारण के कारण की वृद्धि हो, इस सब प्रकार में ये संपत्ति का सदुपयोग हो, ऐसा एक परिणाम उसको रहना चाहिए, उसमें उसको हुए आना चाहिए, तो इसका कोई दुरुपयोग नहीं होता है या कोई अनुचित उपयोग नहीं होता है, इसका विवेक उसको होना चाहिए। जिसके दान देना है तो सुपात्र दान को अनुमोदन किया है, कुपात्र दान को अनुमोदन
नहीं किया है।
कोई पैसा लेकर के उसका अनुचित उपयोग करता है तो उसको दान देना उचित नहीं है, इसलिए सबसे पहले दान के पात्र में हमने राजकोष शास्त्र में बताया
पात्र दान,
पात्र धाम में सबसे उत्कृष्ट पात्र कौन है?
मुनिराज।
जो निर्ग्रंथ मुनिराज है, भावलिंगी नग्न दिगंबर संत, उसको उत्कृष्ट पात्र बताए, क्योंकि ये जीवंत मूर्तिमंत मोक्ष मार्ग है। वैसे तो मोक्ष मार्ग जीव के अरूपी परिणाम है, फिर भी अष्टपावर में भगवान कुंकुंडाचार्य कहते हैं कि अगर तुझे कोई मूर्तिमंत मोक्ष मार्ग का दर्शन करना हो तो ये भाव लेंगे दिगंबर संत है कि मूर्तिमंत मोक्ष मार्ग ये है। तो मोक्ष मार्ग जयवंत वर्षो, आर जानने क्या कामना है?
मोक्ष मार्ग जयवंत वर्षो,
आर के जितने परमाणु हैं वो तो मोक्ष मामले हैं, वो तो उन्हें भी आर थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन इसमें भावना ये है, मैं दान देता हूं ये भावना नहीं है इसमें। ये जो मोक्ष मार्ग जीवंत मोक्ष मार्ग है वो हमेशा जीवंत, वैसे ही तो जिन मंदिर में हम देते हैं तो उसमें ये जो मोक्ष मार्ग के निमित्त भूत है प्रतिमा जी, जिन प्रतिमा दिया ये जयवंत वर्तो हमेशा ये विद्यमान रहो, उसकी विद्यमानता हमेशा रहो, ये भावना है। हम देते हैं वो बात उन बात नहीं है, उसकी विद्यमानता टिकाव रहो, ये भावना। तो ये अपनी भावना का साथ इसका संबंध है, और ऐसे ही इस प्रकार की संपत्ति का उपयोग, संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं रख करके किया जाता है, अधिकार रख करके नहीं किया जाता है। ये बैंक दर्शन का बहुमूल्य सिद्धांत है, अनुभव सिद्धांत है, कि संपत्ति का दान करने वाला संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं है। मैंने दिया वो बात नहीं है, मेरे पैसे दे दिए वो बात इसमें
नहीं है।
પરિવારનો પ્રશ્ન હોય તો દિવસ ને રાત પોતા ચિંતિત રહે, મનોમંથન કર્યા કરે, મળી રાત સુધી વર્ષો સુધી આવી પરિસ્થિતિ ચાલે, અને મુમુક્ષુનો પ્રશ્ન હોય ત્યારે એમ થાય કે ભાઈ મારે શું છે લાગે વર્ગ, તો મુમુક્ષુ તમે ગાભરો હોય શું કે
મુમુક્ષુનો પ્રશ્ન હોય તો એવો પ્રકાર આવે તો એને કુટુંબ વધારે વાલો બને। हमारे यहाँ तो ये सिद्धांत है कि अपना सगा भाई से मुमुक्षु के प्रति अधिक भाई का भाव रहता है, ये हमारा तो सिद्धांत है। जो कुटुंब का भाई है वो पीछे और मुमुक्षु भाई है वो
पहले
आगे, तो परिस्थिति में तो ये भाव आएगा, तो ऐसा ही भाव हमारे लिए कोई काम हो कोई सेवा हो तो बता दीजिए हम कर लेंगे, आपका काम तो हमारा ही होता है, कोई तो भिन्न भाव नहीं है, अभिन्न भाव है आपस में, तो ऐसे ही चले
सवाल ही घर में वपराण
सवाल ही तो ये तो कुटुंब भावना से धार्मिक भावना अधिक होती है तभी सम्यक दर्शन का एक प्रतिबंध टूटता है। वैसे तो बहुत से प्रतिबंध हैं, लेकिन इसमें एक प्रतिबंध ये भी है कि जिसको धर्म के प्रति अनुराग होना चाहिए, इससे ज्यादा अगर कुटुंब परिवार के प्रति अनुराग रहता है उसको धर्म की प्राप्ति कतई नहीं होती, एक प्रतिबंध ये छोड़ता है। ऐसे बहुत से प्रतिबंध छोड़ने का है, इसमें ये तो छोड़ना ही चाहिए।
गुरुदेव जी दृष्टांत आता था पद्मनंदी माते, कागड़ो पर बोलाए बोलाए थे
दान का अधिकार चलता था पद्मनंदी पंच विष्णु माते, गुरुदेव ये कहते थे कि देखिए ये कौवा है ये बड़ी जड़ी बड़ी खिचड़ी आते नहीं, लोग बाहर फेंक देते, तो कौवा खाने को आता है तो अकेला नहीं खाता, तो दूसरे कुआ को बुलाता है का का करके, पांच पच्चीस हाथ में होता है फिर खाता है उसकी जगह। अब तेरे आत्मा के शांति जली और पुण्य की खिचड़ी आई तेरे पास पैसे की कुछ, तो आत्मा की शांति जली तो आई ना, तो ये खिचड़ी खाने में तो अकेला क्यों खाता है दूसरों को साथ में क्यों नहीं देता है? ऐसा ये अधिकार चलता है, गौरव जो बहुत सुंदर प्रवचन करते थे ऐसा दान का अधिकार जब करना ऐसा प्रवचन करते, हजारों बात आई गुरुदेव से तो
बहुत बात
है, हजारों बात बाहर आई
बहुत थोड़ा सा हो।
अच्छा ये तो विषय अंतर हो गया, यहां तो उतनी बात है कि जिस भूमिका में उचित परिणाम होना चाहिए उस परिणाम का त्याग नहीं होना चाहिए किसी को, वरना इस भूमिका का त्याग हो जाएगा। उसमें कुछ संदेह नहीं है, निशंक बात है कि ये भूमिका छोड़ जाएगी और आपके हमारे प्रति निष्काम भक्ति होनी चाहिए। कोई फल रख करके, इच्छा रख करके, वांछा रख करके भक्ति होनी
नहीं
चाहिए। आपको चाहे जितना दुख हो, इसे तो ऐसी बात नहीं करते, इसलिए तो कह दिया कि रवजी भाई के कुटुंब के लिए कोई व्यवसाय करना पड़ता है, वैसे आपके लिए मुझे करना हो तो मेरे चित्त में भिन्न भाव अन्य भाव आता
नहीं,
ये रखकर के ये बात कहते हैं। वरना तो ऐसे लगे कि आपके फर्ज तो मेरा काम करने के, मेरी फर्ज नहीं मांगने के, लेकिन आपके फर्ज तो देने के है कि नहीं, ऐसा हो जाता, न्याय उल्टा हो जाता ना। लेकिन जब ये बात आगे कह चुके हैं तो कहते हैं कि आपको चाहे जितना दुख हो फिर भी उसे धीरता से भोगना
चाहिए,
परिणाम नहीं बिगाड़ करके, परिणाम को ठीक रख करके, जैसे भी उदय हो प्रतिकूलता का हो तो शांति से धीरता से उसको भोगना चाहिए। वैसा न हो सके तो भी हमें तो उसकी सूचना का एक अक्षर भी नहीं लिखना चाहिए। अगर आपको शांति नहीं लगे तो भी हमको तो आपको लिखनी ही नहीं चाहिए, हमें लिखो वो तो बहुत एक कदम और खराब हो जाता है, परिणाम बिगड़ता है, ये तो खराब है ही, लेकिन ये परिणाम बिगड़ने के कारण आप हमें लिखो तो ये बात और खराब है, एक दूसरी खराबी इसमें पैदा हो जाती है। ये आपके लिए सर्वांग योग्य है, उनको नहीं लिखना वो आपके लिए सर्वांग योग्य है, एक परखे से भी वो योग्य है ऐसी बात
नहीं।
और आपको वैसी स्थिति में देखने की जितनी मेरी इच्छा है, आपको अयाचक स्थिति में देखने की जितनी मेरी इच्छा है, और उस स्थिति में जितना आपका हित है, आत्महित की बात कर रहे हैं, इस स्थिति में आपका जितना हित है वो पत्र से या वचन से हमसे बताया नहीं जा सकता। या हम आपको पत्र से क्या बतावे और वचन से क्या बतावे, ये बात तो अंतरंग परिणाम की है कि आप निष्काम भक्ति से वर्तो, यही आपके लिए सर्वांश योग्य है, सर्वांग योग्य है, सर्वथा योग्य है, एक अंश भी इसमें अयोग्यता का नहीं है। परंतु पूर्व के किसी वैसे उदय के कारण आपको वह बात विस्मृत हो गई है, आपको उदय में उतना परिणाम तीव्रता से चला जाता है कि ये बात आप भूल जाते हैं कि भक्ति को निष्काम होनी चाहिए, कुछ वांछा पूर्वक भक्ति होवे वो भक्ति नहीं है, एक दुकानदारी भी हो जाती है। जिससे हमें फिर सूचित करने की इच्छा रहा करती है। इसलिए आपको ये सूचना करते हैं कि आपकी एक बहुत बड़ी गलती है, ये गलती तो कभी होनी चाहिए। उन दो प्रकार की याचनाओं में प्रथम विदित की हुई याचना तो किसी भी निकट भवि को करने योग्य ही नहीं है। रिद्धि सिद्धि के माध्यम के द्वारा, कोई चमत्कार के माध्यम के द्वारा, या कोई मंत्र तंत्र जंत्र ज्योतिष के माध्यम के
द्वारा
कितने प्रकार की याचना है तो किसी भी निकट भवि करने योग्य ही नहीं है। ऐसी याचना कर्म में तो निकट भवीपना रहता नहीं है। देखिए कितना दर्शनों की तीव्रता हो जाती है, ये यहाँ से निकलता है। और तुम मात्र हो तो भी उसका मूल से छेदन करना उचित है। थोड़ी भी ऐसा विकल्प आ जाए, तीव्रता से नहीं मंदता से भी ऐसा कोई विकल्प आ जाए कि हमें लॉटरी लग जाए, एक टिकट खरीद लें, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ आ जाए, मूल से उसको छेद लेना आप तो दूसरे मंत्र तंत्र तो रहे नहीं, क्योंकि तो मंत्र तंत्र साधने वाले भी ऐसे तपस्वी लोग होते थे जिस जमाने में होते उस जमाने में, आज तो है ही नहीं। आज तो लौटियां निकल गई है, जैसे कि तो मूल से छेदन करना उचित है। इसका तो स्वप्न में भी कोई बात आनी चाहिए
नहीं,
क्योंकि लोकोत्तर मिथ्यात्व का यह सबल बीज है। ये लोकोत्तर मिथ्यात्व का सबल बीज है, लौकिक मिथ्यात्व तो है ही, जो भी परिश्रम है व्यवसाय करते हैं, इससे लाभ मानना उससे नुकसान मानना, वो करना वो करना वो करना, ये तो है ही, ये तो उसमें मिथ्यात्व तो है। इससे लाभ है, इससे सुख है, अनुकूलता से सुख है, प्रतिकूलता से दुख है, ये लौकिक मिथ्यात्व में आता ही है। लेकिन ये लोकोत्तर मिथ्यात्व का सबल भी है, ये मंत्र तंत्र जंत्र ज्योतिष आदि से विद्धि सिद्धि से कोई भौतिक लाभ हो जाए, अनुकूलताएं हो जाए, ये तो लोकोत्तर मिथ्यात्व का सबल भी है। मैंने लौकिक मिथ्यात्व को क्षमीय है, ये धार्मिक क्षेत्र में मिथ्यात्व का, जहाँ मिथ्यात्व मिटने का निमित्त है, कारण है, वहां ही मिथ्यात्व उसी निमित्त जीव कर लेता है। फिर छुपने का कौन सा रास्ता, कौन सा निमित्त रहा तो? जिस वितराग देव से हमारा मिथ्यात्व छुटता हो, उसी के निमित्त से हम मिथ्यात्व दृढ़ करें, तो वो तो दुकान में धंधा करते हैं लौकिक मिथ्यात्व है, लेकिन ये लोकोत्तर मिथ्यात्व हो गया।
विशेष लोकोत्तर,
हाँ, लोक से आगे जाकर के, वहां से तो छुपने का कोई रास्ता नहीं है। जो तीरने का कारण है, तीरने का साधन है, उसको ही डूबने का डुबाने का साधन बना ले, फिर तीरने का साधन कौन सा बचा, तो फिर तो कोई बचता नहीं। ऐसा तीर्थंकर आदि का निश्चय है। देखिए क्या बात है, ये तीर्थंकर जैसे महापुरुष ने ये बात सिद्धांतिक तौर से रखी है, हम कहते हैं सो बात नहीं है, ये तो तीर्थंकरों ने भी ये बात कही है कि ऐसा मिथ्यात्व की भूल कभी करना
नहीं है।
और वो हमें तो सप्रमाण लगता है, ऐसे तीर्थंकर का वचन हमको तो सप्रमाण लगता है, हम उसको मान्य करते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। ये तो मात्र ही पहली याचना की, दूसरी याचना भी कर्तव्य नहीं है। सिद्धि सिद्धि की बात एक बार रहो, लेकिन सिद्धि याचना करें, कि हमें मदद करो कुछ, क्योंकि वो भी हमें परिश्रम का वितूर है। हमारी वर्तमान आध्यात्मिक स्थिति ऐसी है कि हम हमारे उपदेश का भी परिश्रम सहन करने के योग्य नहीं रहे हैं। असली परिस्थिति में हम कुछ कर लेते हैं, हाँ हमारे तो दूसरा बोझा कोई डाल दे रहे, ये तो उचित
नहीं है।
हमें व्यवहार का परिश्रम देकर व्यवहार निभाना, यह इस जीव की सदवृत्ति का बहुत ही अल्पत्व बताता है। किसी भी मुमुक्ष अपना व्यवहार का निभाने के लिए, अपना व्यवहार निभाने के लिए ज्ञानी को परिश्रम देने का उसको वृत्ति आती है, तो उसको हमारा काम उसको सौंप दे, तो जीव की सदवृत्ति की बहुत अल्पत्व सूचक है। उसकी जो आत्मनिर्भर की भावना है वो बहुत कम हो गई है, तभी ऐसा उसको उतर आता है कि जीव की सदवृत्ति का बहुत ही अल्पत्व बताता है। क्योंकि हमारे लिए परिश्रम उठाकर आपको व्यवहार चला लेना पड़ता हो तो वो आपके लिए हितकारी है और हमारे लिए वैसे दुष्ट निमित्त का कारण नहीं है। ऐसी स्थिति होने पर भी हमारे चित्त में ऐसा विचार रहता है कि जब तक हमें परिवार का लेना देना हो, ऐसा व्यवहार उदय में हो, तब तक स्वयं उस कार्य का करना अथवा व्यवहारिक संबंधी आदि द्वारा करना, परंतु मुख्य पुरुषों के प्रति संबंधी परिश्रम देकर तो
नहीं
करना। क्योंकि वैसे कारण से जीव की मलिन वासना का उद्भव होना संभव है। कितना सुंदर न्याय रखा है, क्या कहते हैं कि आप हमें तो परिश्रम मत दो, लेकिन हमारे लिए आपको कोई परिश्रम उठाना पड़े तो वो आपके लिए हितकारी है। क्योंकि आपको हमारे प्रति भक्ति है, इसलिए कोई हमारे सेवा कर लो तो आपके लिए उपकारी है, हितकारी है, कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। और हमारे लिए वैसे दुष्ट निमित्त का कारण भी नहीं है और हमको इतना नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो निष्प्र है, हमको कोई अपेक्षा होती नहीं, फिर भी कोई कर लेता है हमारा काम, कर लो, हमें कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए हम तो कोई दुष्ट निमित्त उत्पन्न नहीं होता है। फिर भी ऐसी स्थिति होने पर भी, इतनी हमारी ताकत और योग्यता होने पर भी हमारे चित्त में ऐसा विचार है, क्या विचार है, बहुत सूक्ष्म न्याय प्रामाणिकता का ही कर लिया है कि हमारा अभिप्राय ऐसा है कि जहां तक हम परिग्रह आदि के लेन देन में खड़े हैं, हम व्यापार करते हैं, हमारे पास भी कुछ परिग्रह इकट्ठा हुआ है, इन्होंने भी व्यवहारिक तौर से होता है, जहां तक हम ऐसी स्थिति में हैं वहां तक हम किसी मुमुक्ष को हम परिश्रम देना नहीं चाहेंगे। क्या दूसरे मुमुक्षों को हमारी सेवा का परिश्रम हम दे रहे, ये हम नहीं चाहते। ये काम हम खुद ही कर ले, ऐसा हम चाहते हैं, हमारा काम हम खुद ही कर ले, हमारा काम दूसरे से हम कराने, ऐसा हम बिल्कुल चाहते नहीं है। तो कितनी प्रमाणिकता है, जहां तक हमें परिवार का लेना देना है, ऐसा व्यवहार उदय में है, हमारे उदय में ऐसा व्यवहार है, तब तक स्वयं उस कार्य को करना, हमारा कार्य को हमें ही करना, हमारा कार्य को दूसरा कर दे रहे, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है। अथवा व्यवहारिक संबंधी आदि द्वारा करना, हम नहीं करें तो हमारे सगे संबंधी को बोलेंगे, हमारे भाई को बोलेंगे, हमारे को दूसरे सगा संबंधी को, व्यवहारिक तौर से संबंध सगे संबंधी उसको हम बोलेंगे, मुमुक्ष को नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा काम कर लो हमारा, ऐसा नहीं कहेंगे। देखिए,
अवसर
खुद ही इतना व्यवहार शुद्धि रखते हैं तो मुमुक्षु को तो कितनी रखनी चाहिए, तो ज्ञानी तो इतने व्यवहार शुद्धि रखते हैं हमको इतना दोष नहीं होगा, फिर भी उतनी व्यवहार शुद्धि है व्यवहारिक संबंधी आदि द्वारा करना, परंतु मुमुक्षु पुरुषों के तत्संबंधी परिश्रम लेकर तो नहीं करना, ऐसा हमारा अभिप्राय है। धार्मिक ने पारमार्थिक संबंध छे, एनी साथे व्यवहारिक संबंध न राखो, नुकसान नु कारण थया विना विचारी गुरु अनुभव कर बहु विचार न अंते चारे परखे थे चारों ओर से चारों परखों से विचार से ये बात रखी है, बहुत गहराई से एक बात निकली हुई है और अनुभव की ये बात है, क्योंकि उसमें आत्मा को नुकसान होगा होगा और होगा, धार्मिक भावना आपस की खत्म हो ही जाएगी, जो व्यवहार के खींचा खींची हो जाएगी धार्मिक भावना खत्म हो जाएगा, बिना रहेगी परस्पर की जो धार्मिक भावना है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए इसे व्यवहार में आना ही नहीं, अगर कोई जरूरत हो गई तो दूसरे सगे संबंधी से ये काम निपटा लेना, धार्मिक मुमुक्षुओं से किसी से ये काम करवाना
नहीं।
मुमुक्षु में वधारे लगे पड़े नानी जाए एम कहे तो मुमुक्षु में वधारे लगे पड़े थे, અને જો મુમુક્ષુને તો લખે છે કે તમારે આમ કરવું યોગ્ય નથી, કેમ કે હું એમ મારા માટે નથી માનતો, પછી મારે સમજી લેવાની જરૂર છે, આવી એસી બાતેં શાસ્ત્ર મેં સે આગમ મેં સે મિલના મુશ્કેલ હૈ, એસી બાતેં આવી એસે ન્યાય जो व्यवहारिक जीवन में नुकसान और लाभ का कारण न्याय अन्याय कैसे होता है, लौकिक मिथ्यात्व क्या है, लोकोत्तर मिथ्यात्व क्या है, कैसे जीव को नुकसान हो जाता है, ये बात शास्त्र में से नहीं मिला ऐसी बात है,
थोड़े आगे लंबाई तो पहला परिवार नो संबंध है, पच्ची मुमुक्ष नो संबंध कही जाए तो ये व्यक्ति पर क्या पर संकोची रहनी चाहिए, कोई ने साथ पहला पर पारिवारिक संबंध हो ने पची भी हाँ। मुमुक्षु मुमुक्षु ने संबंध
पहले सगे ही हुए और मुमुक्षु बाद में हुए, तो इस प्रकार का जो व्यवहारिक कार्य कराने का जो अपेक्षा भाव है वो उसको समझ लेना चाहिए, ये व्यक्ति संशय हमारे मुमुक्षु का संबंध है, पहला संबंध हमारा मुमुक्षु का है धार्मिक है, दूसरा संबंध हमारा सगाई का है,
पहला मुमुक्षु नो संबंध हुआ है उसके बाद संबंध था
तो भी मुमुक्षु का संबंध मुख्य रखना, हमारे संबंध ग्रहण कर संबंध अच्छा अच्छा रहेगा, सुंदर है संबंध में, सुंदरता आ जाएगी, क्या आ जाएगा
सुंदरता आ जाएगी
संबंध में, सुंदरता आ जाएगी, सोने में कोई सुगंध आ जाए ऐसी बात हो जाएगी,
કોઈને મનુષ્ય મનુષ્ય સંબંધી હોય અને બીજા કોઈ સંબંધી ન હોય એની પૈસે તો આપી શકે,
આકડી તો કઈ થવાની નથી, આ લાઈન જ એવી છે કે બધું આકડા પણ છૂટી જાય, એવી જાય છે
और
धार्मिक जो संबंध है उसको भी मुख्य रखना, हमेशा व्यवहारिक संबंध को हमेशा
सिक्का एक बाजू से निरपेक्षता હોય જો મનુષ્ય માને તો મેરી નિરપેક્ષિક મનુષ્ય પણ બીજા મનુષ્ય પરત્વે જ્યારે કર્તવ્ય કરવાનું આવે ત્યારે એ વખતે જો પોતાના પરિવાર પરત્વે પોતે રંગ રાખતી કરતો અને ત્યાંથી અતર સુધી સીલ થાય તો એનું મુમુક્ષુ પણ કહેવાય.
તો એ ઉચિત નથી, અનુચિત છે. એટલે તો એમણે એમ કહ્યું તમારે મને દેવું છે પણ મારે લેવું નથી, તો એ સંબંધ કેટલો સુંદર હશે. તમે મને દેવા ચાહો છો અથવા હું તમને દેવા ચાહું છું પણ લેનારે લેવું નથી, હવે એ સંબંધ કેટલો સુંદર થાય એ તો કયો. એની સુંદરતા કેટલી વધી જાય.
મુમુક્ષુ તો નિરપેક્ષ જ હોય, નિરપેક્ષ ન હોય તો મુમુક્ષુ નથી.
એટલે તો જ્યાં સમુચિત પરિણામ છે લેવા વાળાના કે દેવાના, પરિણામ સમુચિત દોનો તરફ સે હોતે હૈ, ઇસસે સુંદરતા સંબંધી કોઈ ઓર જગે હૈ નહીં. જ્યાં એક દિશા અનુચિત હોતી હૈ વહાં બાત ખતમ હો ગઈ.
જ્ઞાન રાગ દ્વેષ ન કરે પણ જે વાસ્તવિકતા હોય એ તો દેખે.
હા બરાબર દેખે. જ્ઞાન વિવેક પણ કરે, વાસ્તવિકતા નહીં વિવેક પણ કરે. જ્ઞાન રાગ દ્વેષ તો કરે, વિવેક કરના હું જ્ઞાન કા પ્રથમ ધર્મ હૈ. ક્યોંકિ વૈસે કારણ છે, વૈસે કારણ છે મેને અપના કાર્ય કી અપેક્ષા રખને સે જીવ કો મલિન વાસના કા ઉદ્ભવ હોના સંભવ હૈ. લાભ લેને કી વૃત્તિ હૈ વો ઉતની ઘર કર જાયેગી કે યે અનિષ્ટ મિટાના મુશ્કિલ હો
જાયેગા.
જૈસે કિસી કો આદત હો જાતી હૈ લેને કી, ફિર વો લેને કી વૃત્તિ ઉસકો રહેતી હૈ, ક્યાં જગહ સે ઉસકો અપેક્ષા વૃત્તિ રહે જાતી હૈ. યે મલિન વાસના હૈ ટાળની મુશ્કેલી.
વાદિદેવ મંદર ભગવાન.